Hare Krishna. Om Agyan Timran Hasagyan Anjana Shalaka Chakshuran Mritangina Tasmai Shri Guru Vinama. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों की ओर से आप सबका दूसरे दिन की आज श्रीमद् भागवत और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की कथा में स्वागत है। धन्यवाद करते हैं इस स्थान, इस भवन शिवालय का निर्माण करने वालों को, जिन्होंने हरि कथा के लिए इस स्थान को भगवान के सेवा के लिए, शुभ कार्य के लिए, और कल इसी के ऊपर कथा चली थी कि शुभ क्या है, पुण्य क्या है। पुण्य है भगवान की कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन है कृष्ण कथा, पुण्य है श्रवण कीर्तन, उसको सुनना और उसका कीर्तन करना। और उसका लाभ क्या है, हृदय अंत स्थानीय भद्राणी धुनोति सुहृद सताम। हृदय के अंदर जो अनादि काल से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का मैल जमा हुआ है, भगवान का ये परम संकीर्तन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन उस हृदय के सारे मैल को धो के साफ कर देता है। तो हमारे कथा सुनने का उद्देश्य क्या है, हमारे कथा सुनने का उद्देश्य है कि कथा से, कथा के अंदर से भगवान श्री कृष्ण कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश हो और हमारे हृदय को धो के उज्जवल साफ करें। और तो फिर क्या होगा, जब हमारा हृदय साफ होगा तो क्या होगा, हृदय के अंदर भगवान विराजमान है, सबकी दिल में भगवान नित्य निवास करते हैं, कोई दिल भगवान से खाली नहीं है। ये भगवान के वचन है भगवत गीता में, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। क्या करते हैं भगवान आप सबके हृदय में, सुहृद सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, मैं सबकी भलाई का काम करता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ कि पहले उतना उन्होंने कितना काम किया है, अब कहाँ से काम शुरू करना है, और उनको भुला देता हूँ जो दुख देने की उनको बातें होती हैं, उनको भुला देता हूँ, और अगर उनकी इच्छा होगी तो मैं उनको अपना ज्ञान भी दूंगा। ये बहुत बड़ा सुंदर श्लोक 15वें अध्याय का भगवद गीता का है। वैदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानने को है। सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। आपको याद कौन दिलाता है कि आपने कितना काम किया है, कहां से काम शुरू करना है, और आपको ये कौन भुला देता है, जो कितनी चिंताएं हैं। आप ये सोच लीजिए, घर में कभी कोई मृत्यु होता है तो कितना दुख होता है, दो दिन खाना नहीं खाता है आदमी और एक साल के बाद सब कुछ भूल जाता है, तो ये कौन भुलाने की शक्ति देता है। वो इतना दुख अगर हमेशा रहे तो आदमी मर जाएगा, कितना दुख हम उठाएंगे इस संसार में, कितने दुख आते हैं। ये भगवान जो हृदय में बैठा है, ये हमारा मित्र है, ये हमारे ऐसे सारे दुख हमको भुला देते हैं, और जो अच्छे काम हमको आगे करने हैं भविष्य में, उनके लिए अंदर से प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन उसकी आवाज हम क्यों नहीं सुनते हैं। परमात्मा सबके हृदय में मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जब आदमी तमोगुण में होता है, नीचे स्तर के गुण में होता है, आलसी होता है, तो वो भगवान की बात सुनता नहीं है, वो प्रमाद में, आलस में, अज्ञानता में होता है। भगवान तो कहते हैं लेकिन वो सुनता नहीं। जब आदमी रजोगुण में होता है तो लोभ का इतना प्रभाव होता है, इधर से उधर भागना, यहां से वहां कटा करना, भगवान की आवाज सुनाई नहीं देता। और जब आदमी सत्वगुण में होता है तो इतना अपने आप को सुखी समझता है, भगवान की आवाज फिर भी कान पे नहीं पड़ती। इसलिए भगवत गीता में एक बहुत दो जगह पे श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि जब तक तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर नहीं उठा लोगे, तब तक मुझे समझना संभव नहीं। निस्त्र गुण भव अर्जुन। अर्जुन, तीनों गुणों, तीन गुण बंधन है। तमोगुण अज्ञान से बांधता है, रजोगुण लोभ से बांधता है, सतोगुण सुख से बांधता है। ये सब बंधन। सतोगुण कैसा बंधन है, सोने का कंगन, सोने की हथकड़ी बना के, हाँ, सोने की हथकड़ी जेल में डाले तो भी तो बंधन ही है ना, और चांदी की हथकड़ी हो तो भी बंधन है, और लोहे की हो तो भी बंधन है। तो सत्वगुण सोने का है तो बंधन लेकिन सोने का है, और रजोगुण चांदी का है और तमोगुण लोहे का है, लेकिन तीनों बंधन है। भगवान क्या है? निर्गुण। भगवान तीनों गुणों से परे है, तो उसको जानने के लिए हमको भी तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तब अर्जुन 14वें अध्याय में भगवान से पूछेगा कि तीनों गुणों से ऊपर उठने का रास्ता क्या है, इन तीनों गुणों के बंधन से हम अपने आप को मुक्त कैसे करें। ये तीन गुणों की माया है, त्रिगुणी माया है, ये संसार को बंधन में डाल के बैठी है। क्यों संसार के बंधन में, तीन गुण की माया में हम पड़े? क्योंकि भगवान को भुला दिया है। कृष्ण भूलिया जीव अनादि काल बाहर मुख, तहां ते माया दे तहां संसार दुख। भगवान को भूलने के कारण हम संसार के माया की गोद में गिर के दुखी होते हैं। तो उससे निकलने का साधन क्या है? तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए कौन सा स्थान है? ये जो मंदिर होते हैं ना, ये तीनों गुणों से परे है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, निर्गुण मम निकेतनम। मेरा जो घर है, मेरा निकेतन का मतलब रहने का स्थान, जहां भगवान कहते हैं मैं विराजमान होता हूं, वो जगह तीनों गुणों से परे होती है। इसलिए भगवान के मंदिर में जितने समय आप जाओगे, भगवान की कथा में जितना समय बैठोगे, उतना समय आप तीनों गुणों से अपने आप को मुक्त रख सकते हो। तो एक सबसे आसान पहला तरीका, इजीएस्ट तरीका, आप कल रात को जो भी आए थे, एक घंटा आप बैठ के कथा सुनी, उस एक घंटे के बीच में आपको कोई चिंता थी? आपको कोई परेशानी थी? आपको कोई दुख था? आप अनुभव करके देखें, जब मंदिर में कथा में सत्संग में हरि कीर्तन में होते हैं और कथा करने वाला अगर परंपरागत भगवान की लीलाओं के गुणगान करता है, भगवान की शिक्षाओं को बताता है, तो आप संसार के सब दुख भूल जाते हो। ये सत्य है कि नहीं है, जरा बताइए, ये सत्य है कि नहीं है? तो इस दुनिया में सत्वगुण से ऊपर उठ के निर्गुण स्तर पे आने के लिए भगवान के सत्संग में आना, भगवान के मंदिर में आना, भगवान के भक्तों का संग करना। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए क्या साधन है? अविविचारेण भक्ति योगेन स्वगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति का आश्रय लेता है भगवान की, वो तुरंत तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को ब्रह्म के स्तर के ऊपर स्थापित कर लेता है, भौतिक बंधनों से छूट जाता है। तो भगवान की भक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठने का एकमात्र साधन है, और न ज्ञान साधन है न कर्म साधन है, केवल शुद्ध भक्ति ही साधन है। तो फिर इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कह दिया, आप मेरे भक्त बनो भव मद भक्तो, आप मेरे भक्त बनो, नहीं कहा कि ज्ञानी बनो। ज्ञानी के लिए तो कह दिया, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। कई जन्मों के बाद कोई ज्ञानी इतना अपने ज्ञान में आत्म साक्षात्कार कर लेगा और ये मानेगा कि भगवान सब जगह है। कौन भगवान सब जगह है? वासुदेव सर्वमिति, हर समय भगवान सर्वव्यापक है, सबके हृदय में है, कण कण में है, और वो वासुदेव ही भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ज्ञान भगवान ने भक्त बनने के लिए भगवत गीता में संदेश दिया। तो भक्त कैसे बन सकते हैं? उसके लिए भी बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान रास्ता है। कल हमने कहा था, इस श्लोक से कथा शुरू करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे कर्म को और मेरे जन्म को दिव्य मान लेता है अलौकिक लोक से न्यारा। लोक में जन्म कैसे होता है, अलौकिक और लोकल के में क्या अंतर है, दिव्य में और सामान्य में क्या अंतर है। सामान्य जन्म हमारा, अच्छा आपसे मैं प्रश्न पहले पूछ लेता हूं, आपका जिस घर में जन्म हुआ क्या आपने च्वाइस किया था, ये आपसे पूछा गया था। हाँ, बाजार में कपड़ा खरीद करने जाते हो अपनी च्वाइस का खरीद करते हो, गाड़ी खरीदनी है अपनी च्वाइस की खरीद करते हो, आपको किसके घर में जन्म लेना है अपने च्वाइस से ले सकते हो। कौन से देश में कौन से घर में कैसे स्थिति में हमको जन्म मिलेगा उसका कौन निर्णय लेता है, कौन डिसीजन लेता है। देव नेत्रेण, दिव्य नेत्रों से भगवान की निर्देश में ये डिसीजन होता है कि इसके कर्म कैसे थे और इसको जन्म कैसा मिलना चाहिए। मैं और फिर आपसे सिंपल एक बात पूछता हूँ, आप अपनी भाषा में कोई आदमी 10 बार किसी को कहो और नहीं काम करे तो उसको क्या बोलते हो, 10 बार समझाओ कि ये करो और फिर भी नहीं करे उसको आप क्या बोलते हो, फिर क्या बोलते हो, बिल्कुल पागेज, बिल्कुल आलसी है। और भी कोई बहुत अच्छा कोई शब्द उसके लिए कहना हो तो क्या कहोगे, गधा है बिल्कुल, कब से समझा रहे हैं अभी तक नहीं समझ रहा है। तो आप भी किसी आदमी को इस संसार में एक जन्म गधे का दे देते हो, अगर वो गधे जैसा होता है तो क्या भगवान उसको गधा नहीं बना सकता। तो वो गधे के आप ही समझते हो ये गधा है। कोई बहुत चालाक होता है, बहुत ट्रिकी होता है, उसको क्या कहते हैं, कैसा है, कोई बहुत चंचल होता है, उछल कूद ज्यादा बच्चा करता है तो क्या बोलते हैं, बंदर जैसे क्यों कूद रहे, यही कहते हो ना। तो ये तो तुम ही इस दुनिया में कितने जन्म लोगों को देते हो। इस मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे स्वभाव के अनुसार देव नेत्रों से कोई अलग जन्म हमको लेना पड़ता है, हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकते। सद असद योनि जन्म सो, तीनों गुणों के प्रभाव से ऊर्ध्व गच्छन्ति सद्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुण वृत्ति स्थो अधगच्छन्ति तामसा। जो सतोगुण में होता है देवलोक में जन्म लेता है, रजोगुण में होता है इस मानव जन्म में आता है, तमोगुण के नीच जूनियों में जाता है, और तीनों गुणों के अनुसार हमारा कहीं जन्म लेना पड़ता है। हम बंधे हुए हैं हाथों, बंधे हुए हाथों से उल्टे लटके हुए माँ के गर्भ में पड़े हुए होते हैं, हमारा जन्म तो ऐसे होता है। और जन्म लेते ही रोते हैं, जन्म लेते ही बच्चा रोता है। कोई मुस्कुराता हुआ बच्चा इस दुनिया में आया है आज तक? बच्चा नहीं रोएगा तो घर वाले रोना शुरू कर देंगे, मालूम है, बच्चा नहीं रोएगा तो जिंदा नहीं है, वो रोता है तो पता लगता है कि जीवित है। बच्चा नहीं रोएगा तो घर वाले रोएंगे, और नहीं तो बच्चा रोएगा तो घर वाले हंसना शुरू करेंगे। देखो कितना आश्चर्य, बच्चा रोता है सब कहते बहुत अच्छा बच्चा है या बच्चा है, अरे वो रो रहा है और तुम हंस रहे हो, कितना बड़ा आश्चर्य है। इसलिए वो बड़ा अच्छा उस संत ने कहा है, जब दुनिया में तुम आए तुम रोए जगत हंसा, तुम रोए और जगत हंसा, अब ऐसे अच्छे काम कर जाओ कि तुम हंसो जगत रोए, तुम्हारे जाने के ऊपर जगत रोए कि कितना अच्छा आदमी चला गया। तो अच्छा काम करके जाओ संसार में, और ऐसे आदमी जो अच्छा काम करके जाता है, सबसे अच्छा काम क्या है, पुण्य क्या है, सबसे बेस्ट डिग्री क्या है जो आपके जीवन में आपको मिल जाए तो आप सब दुखों से मुक्त हो जाओ। सबसे ऊपर की डिग्री हमारे बूढ़े बुजुर्गों को मालूम थी, वो बच्चे का नाम रखने के समय उसको बोलते थे रामदास, गोपालदास, धर्मदास, ऐसे नाम रखते थे, भगवान का दास होना, भगवान का सेवक होना अमर बनने की डिग्री है। इसका प्रूफ क्या है? आप सबके घरों में पूजित हनुमान जी कौन है? भगवान का दास, राम जी का भक्त है। कब हुआ? त्रेता युग में हुआ, 100,000 million years बीत गए, लेकिन आज भी सब घर घर में पूजा जाता है। पूजा जाता है कि नहीं जाता है? तो जो भगवान का भक्त होता है वो अमर हो जाता है, इसलिए भक्त बनना चाहिए। और भक्त बनने के लिए भगवान के जन्म को दिव्य कैसे है, वो कर्मों से नहीं होता है, अपनी इच्छा से भगवान आते हैं। उसको अगर जान लें हम तत्व से, तो फिर हम जन्म दुनिया के बंधन में कभी पड़ेंगे नहीं, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कल ये श्लोक हमने पहले पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कई बार हमने जन्म लिया है, तुम भी आए हो और मैं भी आया हूं, तुम्हें सब भूल गया, मुझे सब याद है। और तब हमने आपको कहा था, ये भगवान ने कहा कि भगवान को सब याद है और अर्जुन को भूल गया, इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि अर्जुन का शरीर बदलता है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान का शरीर जन्म मृत्यु से परे है, भगवान का शरीर सच्चित आनंद है। हमारा शरीर असित है, असत है, दुखमय है, इसको तो कहते हैं दुख है। ये शरीर क्या है? कुछ हड्डियां हैं, कुछ मांस है, कुछ मज्जा है, कुछ खून है, उसको इकट्ठा करके और एक घर बना दिया है। और मौत की आंधी आएगी और ये सब बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये शरीर क्या है? पांच तत्व का पुतला की ना, नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। ये हमारा शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि। पुतला बनाया, नाम रखोया बंदा, बंदे का मतलब मानव। बाहर सूरत सुंदर देखे, बाहर तो बहुत चमकीला दिखता है, अंदर माल भर दिया गंदा। ये चमड़ी भगवान न करे, देखा है किसी को जल जाता है बेचारा, चमड़ी ऊपर नहीं हो तो अंदर उसको देखते हुए डर लगता है। और अंदर है क्या? आंख को सुबह ऐसे करो क्या निकलेगा? गंध। कान में उंगली डाल के निकलो क्या निकलेगा? नाक से निकालो क्या निकलेगा? गंध। मुख से निकालो क्या निकलेगा? गंध। सब जगह से गंध निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ जी। तो अंदर गंदी तो है, बंदा तो बंदगी, नहीं तो गंदे का गंदा। अगर इंसान है, अगर भक्ति करता है तो महान है, नहीं तो जैसा अंदर कचरा ऐसा बाहर कचरा। तो हमारा शरीर बदलता है, शरीर नाशवंत है, भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चित आनंद है। ये कल बात कही थी, लेकिन जब अर्जुन को भगवान ने कहा बहुनी में जन्मानी, तो भगवान ने अर्जुन की ओर देख के कहा, क्या आपका भी जन्म होता है क्या? लोग जब सुनते हैं कि भगवान का जन्म, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान जन्म लेते हैं क्या? अरे जन्म लेना, मां के गर्भ में आना तो बहुत बड़ा कष्ट है। जननी जठड़े, भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, मूर्ख गोविंद का भजन कर, नहीं तो जठड़ी जननी जठड़े, गर्भ में जाके, जठड़े कहते हैं अग्नि को, उधर पड़ना गिरना पड़ेगा। तो क्या भगवान आपका जन्म होता है क्या? तो भगवान ने कह दिया, अजोपि सन्नव्य आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अव्य आत्मा, मेरा ये जो शरीर है एक कभी बदलता नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं आता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और ये जिनको भूत लगा हुआ है ना, भूत का मतलब पांच भूतों का शरीर। भगवान ने अपने लिए क्या अवे आत्मा और सबके लिए भूत, ये भगवान की भाषा को सुनिए। अजोपिशन अवे आत्मा, मैं अजन्मा हूं कृष्ण कहते हैं, और मेरा शरीर अव्य आत्मा। अव्य का मतलब होता है अविनाशी, अव्य का अर्थ होता है कभी घटता नहीं कभी बढ़ता नहीं, सदा समान रहता है। और बाकी सबके लिए क्या कह लिया, भूतानाम ईश्वरोपिशन, बाकी सारों का शरीर पांच भूतों का बना हुआ है तो वो पांच भूत भी मेरे हैं। मया अधिक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति ने पांच भूत दिए है, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। ब्रह्म गर्भम ददामी अहम, ये प्रकृति मेरी स्त्री है, उसके गर्भ में मैं जीवों को स्थापित करता हूं और ये जीव मेरे अंश हैं। तो इनका शरीर बदलता है, मेरा शरीर नहीं बदलता है, ये भगवान ने साफ बता दिया। और फिर कह दिया अजोपिशन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने स्वभाव से जब चाहूं तब मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान आपका स्वभाव क्या है, बोला भक्त वत्सल, भक्तों को दुख में देख नहीं सकता हूं, वो जब कष्ट में होते हैं तो मैं अपने आप आ जाता हूं। भगवान करुणामय है, दयामय है, भक्त वत्सल है, ये भगवान का अनुग्रह भगवान करता है, ये भगवान का स्वभाव है। स्वयं प्रकृतिम, मेरी अपनी योग माया से मेरे स्वभाव के कारण संभवामी, मैं प्रकट होता हूं, जन्म लेता हूं नहीं प्रकट होता हूं। तो अर्जुन ने कहा फिर आप क्यों प्रकट होते हैं, आपका स्वभाव क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्योत्थानम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजान्यम, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म को स्थापन करने के लिए युग युग में जन्म लेता हूं। तो धर्म की हानि का क्या अर्थ है, धर्म के ऊपर चलने वाले कम हो जाते हैं, अधर्म बढ़ने का क्या अर्थ, अधर्म करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। मानो कि आपके यहां 12 लाख लोग आदमी हैं, 1.2 मिलियन आदमी हैं, उसमें से जनरली ऐसे होना चाहिए भाई कम से कम 400-500 मिलियन धर्म के ऊपर चलने वाले हो, 5-6 मिलियन अधर्म तो बैलेंस है, नो प्रॉब्लम, लेट इट गो। लेकिन 1.2 में 1 मिलियन अधर्म पे चले, 1.1 मिलियन अधर्म पे चले, बाकी थोड़े धार्मिक बच जाएं तो बेचारे धर्म का काम कर नहीं पाएंगे। तो इसको बोलते हैं अधर्म बढ़ गया, मतलब अधर्म करने वाले लोग बढ़ गए। धर्म कम हो गया इसका मतलब धर्म के ऊपर चलने वाले लोग कम हो गए। धर्म तो अविनाशी है, धर्म अविनाशी है, धर्म भगवान का दिया हुआ है, वो नाश नहीं होता है। धर्म के ऊपर चलने वाले नाश हो जाते हैं। तो अर्जुन ने देखा भगवान की ओर, कहा कि धर्म को ही स्थापन करना है, लोगों को अच्छे रास्ते पे चला के आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलाना है, तो आप क्यों अवतार लेकर आते हैं, अपने बेटे को भेज दो। भाई जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा भगवान का सन अपने आप को कहता है, वो सन है भगवान का, तो भगवान ने अपने सन को भेजा, लोगों को धर्म के ऊपर चलाया ना, अपने मैसेंजर को भेज दो। हजरत मोहम्मद, मोहम्मद जन का भगवान का मैसेंजर है, तो मैसेंजर को भेज दो, धर्म की स्थापना तो वो भी कर लेंगे, आप स्वयं क्यों आते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए किसी साधु संत महात्मा अपने बेटे को अपनी शक्ति देके भेज दो, धर्म की स्थापना कर ले। तो भगवान ने आगे श्लोक बोल दिया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो साधु है, जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, जो साधना करके मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं दुखी देख नहीं सकता। वो जब दुख में होते हैं और मेरी ओर देख के प्रार्थना करते हैं, तब मैं अपने आप को स्वभाव के कारण, भक्त वत्सल स्वभाव के कारण दौड़ता हुआ इस धरती के ऊपर आता हूं। और जब आ जाता हूं तो दुष्टों का नाश भी कर देता हूं। वो दुष्टों का नाश करने के लिए मैं नहीं आता हूं, दुष्टों को नाश करने के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति कभी चाहे तो सुनामी आए और सारे का सारा, पूरे का पूरा जापान ही डूब जाए, और चाहे तो प्रकृति में अर्थ को एक हो, वो भूकंप आ जाए और सब उल्ट सुलट हो जाए, समाप्त हो जाए, वार हो जाए, लोग सब मर जाए। भगवान को अगर दुष्टों को ही नाश करना हो तो एक आइटम बम गिराने से सब मर जाएंगे, कथा समाप्त हो गई। तो मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, तारने के लिए आते हैं। परित्राणाय, तारणा, तारने के लिए आता हूं साधु पुरुषों को, युग युग में आता हूं। तभी भी अर्जुन के मन में ऐसा विचार आया, तो ठीक है, भक्तों ने बुलाया, आप आए, भक्तों का काम हुआ तो फिर आप चले जाओ, ऐसा होना चाहिए ना। नरसिंह देव बन के आए, प्रहलाद का आपने रक्षा की, रणाकश को मार दिया, लेकिन ये श्री कृष्ण आप क्यों अवतार लेते हैं? तब भगवान ने ये श्लोक कहा, जन्म कर्म च मे देव्यम, क्योंकि जब मैं आता हूं मैं अद्भुत रूप से प्रकट होता हूं, मैं अपनी इच्छा से आता हूं, और मैं जो काम करता हूं, जो मेरी लीला है, वो इतनी मधुर है कि मेरे जाने के बाद लोग उस लीला का श्रवण करते हैं और मेरे जन्म को जन्माष्टमी करके जब मनाएंगे, और उसको जब वो तत्व रूप से जानेंगे, और जब वो अपने हृदय में वो मुझे देखेंगे, तब वो जन्म मृत्यु के बंधन से एकदम मुक्त हो जाएंगे और मेरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। एक बार अकबर शहंशाह का मंत्री बीरबल, बीरबल सनातन वैदिक धर्म का था, और अब अकबर जो है भारत का, पूरे भारत का एम्परर था, शहंशाह था और मुगल था। तो बीरबल ने कहा अप्रैल में, मार्च में के गौर पूर्णिमा है, छुट्टी दो, और अप्रैल में कहा है कि रामनामी की छुट्टी दो, फिर मई में कहा कि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, घर जाना है, छुट्टी दो, और फिर कहा कि अब जन्माष्टमी आ रही है, छुट्टी दो। तो शहंशाह अकबर ने कहा, क्या बीरबल तुम्हारे भगवान के पास कोई संदेश पहुंचाने वाला नहीं है? क्या उसके पास कोई काम करने वाला नहीं है? उसको भेज के काम करा दे, हर बार खुद क्यों आता है? तो बीरबल ने कहा, महाराज इस बार तो छुट्टी दो, अगली बार आपको इसका उत्तर दूंगा। बीरबल बड़ा बुद्धिमान था। महीने के बाद जब बीरबल लौट के आया तो एक बहुत सुंदर अकबर का बेटा जो छोटा था, एक साल का, उसका फोटो ले गया और उसकी बहुत सुंदर एक मूर्ति बना के आया, और मूर्ति ऐसी जैसे साक्षात बच्चा दिखता हो, वो वेक्स की बनाई, बड़ा सुंदर कलर किया, अच्छे कपड़े पहनाए। जब हम ऐसे बात करते हैं मूर्ति की, तब हमको याद आता है प्रभुपाद जी की मूर्ति जो हमारे मंदिरों में स्थापित है, वो इतनी साक्षात लगती है। जब मैं कराची में रहता था, अभी इंडिया नहीं आया था, तो एक कराची से आया हुआ यात्री बॉम्बे में अपने किसी मित्र के पास आई थी माता जी, एक मुस्लिम वहां से, एक मोहम्मद जन माता जी, वो आर्टिस्ट थी, यहां आई थी, और कुछ लोग उसको बॉम्बे मंदिर इस्कान का जुहू दिखाने गए। तो वो माता जी ने वापस आके पाकिस्तान में एक पुस्तक में अपना यात्रा का पुस्तक लिखा, मेरी यात्रा, भारत यात्रा। तो उस यात्रा को मैं पढ़ते हुए देख रहा था, लिखा कि जब मेरे को मेरे होस्ट वो एक हरे कृष्णा मंदिर में ले गए, तो वहां मैंने सामने तो उनके पूजा के मूर्तियां थी उनको देखा, लेकिन मैंने मुड़ के देखा तो एक महात्मा बैठा है। तो मैं वहां से मुड़ के महात्मा के पास हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैंने बोला अब महात्मा मेरे को आशीर्वाद देगा। और मैं थोड़ी देर खड़ी रही उधर, तब मेरे होस्ट ने कहा चलो। बोला नहीं, महात्मा से आशीर्वाद लेके चले, जरा बात कर ले। तब मेरे होस्ट ने कहा कि ये मूर्ति है। और तब उसने कहा, मैंने देखा, अरे हाँ ये तो मूर्ति है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे साक्षात महात्मा बैठे हैं ऐसे दिखा। उसने अपने वो जो यात्रा लिखी थी उस पुस्तक में छपे हुए में ये लिखा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मूर्ति कभी इतनी सज्जन होती है, इतनी साक्षात होती है कि आदमी को लगता है ये तो साक्षात बैठा है महात्मा। इतना सुंदर जब मूर्ति बना के आया बीरबल, तो अकबर के घर में वापस जब राज में आया, तो जो घर में मेड थी जो बच्चे को देखभाल करती थी, उसको कहा ये देखो 100 रुपया चांदी का आपको देता हूँ, सिल्वर क्वाइंस। तुम एक काम करना, ये जो मैं मूर्ति बना के बच्चा लाया हूं ना, सबसे अच्छे कपड़े जो बच्चे के हैं इनको पहनाना। और जब दरबार लगी हो, जब असेंबली हो, सारे मंत्री बैठे हो, सेनापति बैठे हो, कमांडर बैठे हो, जनरल बैठे हो, और महाराज जब अपने सिंहासन पे बैठे हो, तब बच्चे को तुम सभा में लाना, मोम के बच्चे को, चित्र जो गुड़िया को। और सभा के अंदर बहुत सुंदर एक फाउंटेन बना हुआ है पानी का, तुम उधर खड़ी रहना और बच्चे को हिलाती रहना। अकबर जब उसके वो देखेगा शहंशाह, तो अपने बच्चे को देख के मुस्कुराएगा। तुम समझ जाओगी कि इसकी नजर अपने बच्चे के ऊपर पड़ी है। उस वक्त तुम बस एक काम करना, बच्चे को पानी में गिरा देना, 100 रुपया तुम्हारा, 100 सिल्वर क्वाइन। एक दिन ऐसा सभा लगी है, मंत्री मिनिस्टर सब बैठे हैं, सेनापति और सब पावरफुल लोग बैठे हैं, और शहंशाह अकबर ऊपर बैठे हैं। वो बच्चे को लाई मेड, मासी घूम नचा रही है, खिला रही है, ऐसे कर रही है। अकबर ने देखा, मुस्कुराया, उसने बच्चे को पानी में गिराया। अकबर अपने तख्त से उठा और शाल गिर गई, मुकुट नीचे रह गया, भागते हुए पानी में गिरा। राजा के कपड़े पहने हुए एकदम बच्चे को उठाया, निकाला। अरे ये तो मूर्ति बच्चा, किसने मेरा मजाक किया है? बीरबल ने कहा, महाराज एक साल का छोटा सा बच्चा था, पानी में गिर गया था ना, तो ये जो नजदीक बैठा था, इस सेनापति को बोला होता जाके कूद के निकाल देता, और इस मंत्री को कहा होता, बच्चे को निकालना कौन सा मुश्किल था, आपने आदेश दिया होता निकल जाता ना। अकबर कहता है, बीरबल मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसको देखा गिरते हुए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं स्वयं उसको निकालने के लिए गया। तब बीरबल कहता है, महाराज आपको अपने बेटा इतना प्यारा है कि आपको कोई दिखाई नहीं दिया, हमारे भगवान को जब भक्त संकट में होता है तो कोई दिखाई नहीं देता है, स्वयं दुनिया में चला आता है। वो अपने जो आप अपने बच्चे के लिए पानी में कूद पड़े हो ना, ऐसे भगवान इस भौतिक जगत में कूद पड़ते हैं, कब? जब उसका भक्त संकट में होता है। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान के अवतार के लिए भागवत में लिखा है, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान विश्व आत्मा है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और सभी भगवान से प्रेम करते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन करते भगवान से ही प्रेम है। कुछ लोग जानते नहीं हैं लेकिन करते हैं, किसी न किसी से प्रेम करता है, जिससे भी प्रेम करते हैं उसके अंदर तो भगवान है ही। और वो भगवान जो सब विश्व के प्रेम का पाप, जो भगवान जिससे सब प्रेम करते हैं, जो सबके प्रेम का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव फॉर द होल universe, not only universe, all the universes. वो भगवान कैसा है? भक्तानाम अभयंकर, अपने डिवोटीज को फियरलेस बना देता है, भय से मुक्त कर देता है. तो ऐसे भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए. और भगवान अगर अवतार न लें तो भगवान है इस बात की पुष्टि कैसे होगी? ये बात सिद्ध कैसे होगी? हम कैसे मानेंगे कि भगवान है अगर भगवान नहीं आए तो? भगवान अवतार नहीं ले तो भगवान के ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा कि भगवान है. हाँ भगवान है, आकाश पे है, तो आकाश पे है तो हमारा क्या काम? जब यहां आएगा तब हम देखेंगे ना. तो भगवान अवतार लेते हैं तभी संसार को विश्वास होता है कि भगवान है. और भगवान के आने को कहते हैं अवतार लेना. अवतार का क्या अर्थ है? ऊपर से नीचे उतर के आना. अवतार का अर्थ जन्म नहीं होता है. वैसे जन्म का अर्थ भी पैदा होना नहीं है. संस्कृत में जन्म का अर्थ है प्रकट होना. जो पहले अप्रकट था वो अब प्रकट हो गया. अब आपसे हम पूछते हैं, हमें 8 महीना पहले पता होता है कि बच्चा मां के गर्भ में, ये सत्य है कि नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब बच्चा तो पहले ही था, लेकिन हम कहते हैं कि इसका बर्थ डेट ये तारीख है जब उसका जन्म हुआ तब. तो जन्म होने का मतलब है जो पहले था वो अब, पहले दिख नहीं रहा था अब दिख रहा है. था पहले कि नहीं था? उससे पहले पिता के अंदर पुत्र होता है और फिर मां के अंदर पुत्र प्रवेश करता है, तो सबको मालूम है कि इसके गर्भ में बालक है. लेकिन जिस वक्त सामने आता है तो उसको जन्म कहते हैं. तो जन्म का मतलब ये नहीं है कि पहले था नहीं, पहले था अब दिख रहा है. पहले दिख नहीं रहा था अब दिख रहा था. इसलिए जन्म का मतलब कभी ये नहीं है और मरण का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया. मरण का मतलब है कि अभी हमारे आंखों के सामने नहीं दिख रहा है. भगवान के जन्म को भी समझने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे सूर्य का उगना. जब सूर्य सुबह उगता है तो हम थोड़ी कहते हैं कि सूर्य का जन्म हुआ, और शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि सूर्य मर गया? कहते हैं कभी? क्यों? क्योंकि कल फिर उगेगा. मर जाने का मतलब है कि फिर कभी नहीं आएगा. लेकिन सूर्य रात को अस्त हो गया, शाम को सुबह फिर उगेगा. लेकिन सुबह तो उगेगा लेकिन रात को मॉरिशस में नहीं दिख रहा है, लेकिन इस वक्त कनाडा में दिन है. इसका मतलब जब सूर्य हमको नहीं दिखता है तो कहीं तो दिखता है. ये सत्य है कि नहीं है? अभी कहीं सूर्य है कि नहीं है दुनिया में? अभी दिन है कि नहीं दुनिया में? कहीं है ना. तो जब भगवान यहां नहीं दिखते हैं तो किसी और लोक में दिखते हैं. अब भगवान यहां नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे असंख्य लोक हैं. इस दुनिया में कितनी कंट्री हैं? कितनी कंट्रीज हैं? कितनी सिटीज हैं? आपके गांव कितने हैं मॉरिशस में? इतना भी पता नहीं है और समझते हैं कि हम सब जानते हैं. मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जितने कंट्रीज हैं हर एक कंट्री में सूर्य उदय होता है, एक ही सूर्य है. सूर्य कोई अमेरिका का अलग नहीं है, रशिया का अलग नहीं है, या चाइना का अलग नहीं है, इंडिया का अलग नहीं है, मॉरिशस का अलग नहीं है. एक ही सूर्य है और सबको प्रकाश देता है. ऐसे एक ही भगवान है और अनलिमिटेड यूनिवर्सिस में अवतार लेता रहता है. इसलिए भगवान का जन्मदिन तो मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाते हैं. थोड़े दिन पहले रूप गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे था, प्रभुपाद का कार्तिक में डिसअपियरेंस डे आता है. तो साधु संत महात्मा का अपियरेंस और डिसअपियरेंस डे होता है, लेकिन भगवान का राम नामी तो मनाते हैं, जन्माष्टमी तो मनाते हैं, लेकिन कोई उनके डिसअपियरेंस डे कहीं कोई दुनिया में मनाता है? क्यों?
भाई आखिर क्यों नहीं मनाया गया, वो भी तो यहां से चले गए ना, तो डिसअपीयरेंस डे क्यों नहीं मनाते हैं? ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों नहीं मनाते? इसलिए नहीं मनाते कि वो डिसअपीयर हमारे आंखों से हुए, कहीं और अपीयर हुए। उनकी लीला नित्य है, इसलिए भगवान के जन्म को दिव्य मानना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण प्रभुपाद जी दिया करते थे, जैसे कंट्री में जेल होता है, प्रिजन हाउस, तो जेल में लोग क्यों जाते हैं? जब कोई देश के लॉ को ब्रेक करते हैं, जब कोई क्राइम करते हैं, तो प्रिजन में जाते हैं। ऐसे जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, और धर्म भगवान का नियम है, जब उसका उल्लंघन करते हैं, तो इस भौतिक जगत रूपी जेल में आते हैं। लेकिन जेल के अंदर सिर्फ क्रिमिनल नहीं रहते हैं, जेल में पुलिस सुपरिटेंडेंट भी रहता है और पुलिस भी रहती है। जेल में रोज पुलिस सुपरिटेंडेंट सुबह जाता है ना, उसको कोई फोन करके पूछे कि आप कहाँ हैं, तो क्या बोलेगा? आई एम इन जेल, यही कहेगा। एक बार जयपुर में हम गए थे, हम प्रिजन में प्रचार करने भारत में जाते हैं, प्रिजन प्रीचिंग करने जाते हैं, तो जब हम प्रचार करने गए तो किसी का फोन आया बाहर, अभी जेल के बाहर खड़े थे, अंदर फोन अलो नहीं होता है, तो हमको कहा कहाँ है, हमने बोला हम जयपुर जेल में है। तो उसने चारों ओर बोल दिया कि डॉक्टर साहब जेल में है। अब चारों ओर परेशानी कि जेल में क्या हुआ क्या हो गया पता नहीं। ऐसे एक घंटे के बाद हम सत्संग करके आए, तब देखे बहुत सारी मिस कॉल पड़ी है, तो सबको फोन किया, बोला आप ठीक तो है ना, जेल में कैसे गए थे? अरे हम जेल में गीता का प्रचार करने गए थे। अरे ये हम समझे कि आप पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे जेल में हम भी जाते हैं, लेकिन वो जेल में हम गीता का प्रचार करने जाते हैं, जेल में जेल का सुपरिटेंडेंट भी जाता है। जैसे ये साधु संत महात्मा आते हैं, प्रभुपाद जी आए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए, ये कोई अपराध करके इस मौतिक जगत में नहीं आए। हमने कल कहीं बताया था, एक बार प्रभुपाद जी अपने किसी अंतरंग शिष्य को बैठे हुए कह रहे थे, मैं तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मगन था, श्री कृष्ण ने कहा तुम भौतिक जगत में जाओ। मैंने बोला नहीं, क्या करूंगा, बड़ा दुख तकलीफ होगा। बोला नहीं, आपको भागवत को सारी दुनिया के समझने की भाषा में लिखना है, जाओ। तो ऐसे भगवान ने भेजा कि अंग्रेजी भाषा में भागवत को पूरी दुनिया को दो, ताकि दुनिया के लोग कृष्ण को जान सके, चेतन चरितमृत दुनिया को जाके दो, ताकि चेतन महाप्रभु की दया और करुणा को और उनके उदारता को लोग सीख सके। इसलिए ये जो संत महात्मा आते हैं, ये भी जेल सुपरिटेंडेंट की तरह होते हैं, ये भी अपराध करके नहीं आते हैं, लेकिन जेल के अंदर कभी प्राइम मिनिस्टर जाना चाहे अपनी जेल में, तो वो क्यों जाता है? देखने जाता है कि बंदियों को जो जेल में प्रिजनर है उनकी देखभाल ठीक हो रही है, उनमें से कुछ सुधर जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो किसी को कह सकता है तुम निकल जाओ, तुम अच्छे हो, इसको जेल से निकाल दो, फ्री कर दो, ही इज राइट। तो भगवान जब आते हैं इस दुनिया में, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर जेल में जाता है, ऐसे भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब जेल में जाता है, तो उसके ऊपर जेल का कोई ला नहीं लगता है, वो जेल के ला बनाने वाला है, जेल का ला उसके ऊपर नहीं लगता है, वो जेल के अंदर लोगों को मुक्त करने के लिए जाता है, सुख देने के लिए जाता है। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं, तो हमारे को दर्शन देके, शिक्षा देके और अपने सुंदर लीलाओं के द्वारा आकर्षित करके अपनी ओर खींच लेते हैं और भौतिक जगत से मुक्त कर लेते हैं। इसलिए सातवें स्कंद श्रीमद् भागवत में नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने जब पूछा कि ग्रस्त लोग हैं हम, अपने काम काज में इतने फंसे हुए हैं कि यहाँ से हम आसानी से, बहुत सरलता से, अंजसा
जैसे आंख में काजल डालते हैं तो बहुत आंख अच्छी लगती है लेकिन दुखती नहीं है, इतना कोई आसान रास्ता बताओ जिससे हम गृहस्थी भी भगवान को पा सके। तो नारद ने पहला उत्तर दिया, वासुदेव अवतार कथा श्रवण। गृहस्थियों को भगवान कृष्ण की कथा, अवतार की कथा सुननी चाहिए। बोला इससे लाभ क्या होगा कि जब ये वो कथा सुनेगा तो भगवान की करुणा को सुनेगा, भगवान की दया को सुनेगा, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनेगा। तो जितना समय कथा सुनेगा उतना समय तो उसका भगवान के ध्यान में जाएगा और उतना समय वो दूसरे दुनिया के कर्म करने से बच जाएगा। एक घंटा जब आप यहां बैठे हैं तो आप दुनिया का कोई कर्म तो नहीं कर रहे हैं ना, तो ये समय आपका सेफ हो गया, ये भगवान की सेवा में लग गया, भगवान की कथा श्रवण में लग गया ये। और फिर जब भगवान की कथा सुनेगा तो भगवान में उसकी अटैचमेंट होने लगेगी, जिसकी कथा सुनेगा उसमें उसको प्रेम आने लगेगा। तब जब भगवान में प्रेम आएगा तो टाइम तो 24 घंटा है सबके पास, जब भगवान घर में है, भगवान को अभी घर में विराजमान किया है तो उसको श्रृंगार भी कराएगा, फिर उसके लिए भोजन भी बनाएगा। तो अब भगवान के लिए जब टाइम निकालेगा तो दुनिया में बंधन आस्ते आस्ते कम होने लगेंगे। टाइम तो उतना ही है हमारे पास, जितना भगवान की सेवा में जाता है उतना हम दूसरे दुनिया के कर्म करने से बच जाते हैं, जो कर्म हमको बंधन में डालते हैं, नहीं तो यही काम कहीं और लगाएं। अभी जैसे भक्त हैं, एक डेढ़ घंटा रोज बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, तो ये एक डेढ़ घंटा उनका किसी और काम करने से तो बच गए ना, कोई और कर्म करने से बच गए, जो जिस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये तो ये कर्म नहीं है, ये तो भगवान की प्रेम भक्ति का साधन है। तो पहला साधन नारद ने बताया, युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थों को भगवान वासुदेव की कथा चरित्र लीला का श्रवण करना चाहिए। और ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण कथा और पहले हमारे भारत में हमेशा राम कथा और कृष्ण कथा जगह जगह प्रतिदिन गाई जाती थी, सुनी जाती थी, सुनाई जाती थी, इसलिए भारत को महान कहते थे। भारत इसलिए महान था कि प्रतिदिन हर गांव में रोज कथा होती थी। अगर आप भी 50 साल पीछे देखेंगे, आपके गांव में, आपके मॉरिशस में, आपके बड़े रोज बैठ के मंदिरों में राम कथा राम गाया करते थे, उन रोज का नेम हुआ करता था, पाठ रोज करते थे, ऐसे नहीं कि संडे संडे पाठ करते थे, ऐसा नहीं था, रोज रोज नित्य नेम होता था। तो कुछ समय हमारे को रोज भगवान के कथा सुनने में अथवा शास्त्र पढ़ने में या भगवान के नाम जपने में लगाना चाहिए, उतना हमारा समय फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। वो आपका समय जैसे पैसे आपके फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं तो अपने आप बढ़ते रहते हैं, कभी कम नहीं होते हैं, जो पैसे जेब में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो टाइम आपका जा रहा है ये फिक्स डिपॉजिट का टाइम है, ये आपका टाइम तब काम आएगा जब आपके पास संसार की कोई चीज काम नहीं आएगी, तब ये आपका समय आपके काम आएगा। प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को इस तरीके से, जैसे जन्माष्टमी में तो बड़े उत्साह के साथ 7-8 दिन कथा का कीर्तन का आयोजन करते हैं, लेकिन नित्य निरंतर भागवत का श्रवण करना चाहिए, रामायण का श्रवण करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। कल हमने कहा था बच्चों को गीता के श्लोक याद कराने चाहिए, उनसे बच्चों के मानसिक ऐसी सेफ्टी ऐसी उनके मन में आ जाएगी कि बड़े होके वो सेवक बनेंगे, अच्छे माता पिता का आदर करने वाले बनेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे और अपना भविष्य तो उज्जवल करेंगे ही, देश का भी करेंगे। इसलिए बच्चों को बचपन में भगवान की कथा, भगवान के श्लोक, गीता के भागवत के याद कराने चाहिए और बड़ों को शास्त्र रोज पढ़ने का नियम बनाना चाहिए। तो कोई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये सत्य नहीं है, सबके पास टाइम है। जो टाइम आजकल लोग टीवी के ऊपर बेकार में गंवाते हैं, वो टाइम पहले हमारे बुजुर्ग गीता भागवत पढ़ने में लगाते थे, रामायण पढ़ने में लगाते थे। जो टाइम हमारा टीवी में जाता है, अखबार पढ़ने में, पेपर पढ़ने में जाता है, वो टाइम पहले गीता भागवत रामायण पढ़ने में जाता था। तो आप देख लो कि कौन सा दोनों में से अच्छा काम है, कि न्यूज़पेपर पढ़ना। और न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ते हैं लोग प्रायः सुबह सुबह? हाँ, न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ते हैं? अगरबत्ती जला के फिर पढ़ते हैं कहीं बैठकर? हाँ, मॉरिशस में प्रभु, मॉरिशस में न्यूज़पेपर लोग कहाँ बैठ के पढ़ते हैं सुबह? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, ऑफिस में। इसका मतलब जो ऑफिस में काम करना है उसकी जगह जाके एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चलो तो भारत में कहाँ पढ़ते हैं, चलो ये बताओ। हाँ, एक टॉयलेट में मैं गया तो उधर जैसे बुक शेल्फ जैसे हो ना, ऐसे उधर मैगजीन का बुक शेल्फ और अखबारों का बुक शेल्फ रखा हुआ था। तो ये चीज पढ़ने से, जो चीज पढ़नी टॉयलेट में है, इसका मतलब टॉयलेट की तरह उसको देखना ही नहीं चाहिए। जो चीज शुद्धता से पढ़नी चाहिए, जिसका आदर करना चाहिए, वो चीज हमारे घरों से चली गई, उसको वापस किसी तरीके से लाना अति आवश्यक है। तो भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, भगवान कैसे प्रकट हुए, ये आज 5-1 मिनट इसकी बात आज करते हैं। और इसको कल हमारा विचार है, अपना क्या नाम सुनिए प्रभु, कल एक सुंदर सा भगवान का झूला यहाँ होना चाहिए। सब लोग झूले, ये तो उत्सव मनाते हैं, तो जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, तो सब लोग झूले का, भगवान को झूला भी, और यहाँ कथा के बाद में झूला होना चाहिए। इस तरीके से कुछ उत्सव मनाना चाहिए। कल भगवान का यहाँ की कथा में कल भगवान का जन्म करेंगे, ठीक है? हाँ जी, जरूर करेंगे। कल भगवान का यहाँ प्रकट है, कैसे भगवान का दिव्य है, भगवान कैसे, पहले भागवत का एक श्लोक का वर्णन जो मैंने उच्चारण किया वही वर्णन करता हूँ। पहले भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर अंश भागेन आवेश मनः अनंक दुम दुबी। ये भागवत के 10वें स्कंद के 2वें अध्याय का श्लोक है कि भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, जिससे सब संसार भगवान जिससे प्रेम करते हैं, जो भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, वो अपने सब अंशों के सहित वसुदेव के मन में आके विराजमान हुए। वहां श्री कृष्ण अपियर्ड इन द माइंड ऑफ वसुदेव। और जैसे ही भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव से इफलजंस निकलने लगा, प्रकाश निकलने लगा। और वसुदेव की तरह जैसे आदमी सूर्य को नहीं देख सकता है, इसके ऐसे वसुदेव को देखना या वसुदेव को अप्रोच करना ही मुश्किल हो गया। तो भगवान कहां अपीयर हुए? वसुदेव के मन में अपीयर हुए। और वसुदेव के मन से जगत मंगलम, जगत का मंगल करने के लिए, दुनिया की ऑस्पिशियसनेस के लिए, वर्ल्ड की, अच्युत अंशम अपने सारे अंशों के सहित, अथवा भगवान जो परिपूर्ण श्री कृष्ण है उसके अंश के रूप में वसुदेव के घर में, जो कृष्ण वसुदेव सुरसुतेना, सुरसेन के पुत्र वसुदेव के मन से देव रूपी देवकी जो देव रूप है उसके मन में भगवान ट्रांसफर हो गए। इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखा है भगवान का अपीयरेंस सामान्य संसारी बच्चे के तरह नहीं हुआ है, स्त्री पुरुष के। भगवान पहले वसुदेव के मन में आए और सबने देखा, वसुदेव प्रकाशमान हो गए और समय आने के ऊपर वसुदेव के मन से देवकी के मन में भगवान ट्रांसफर हुए और देवकी भी चमकने लगी। लेकिन कंस के कारागृह में होने के कारण उस चमक को कोई देख नहीं पाया। वो कितनी सुंदर लग रही थी भगवान को अपने हृदय में धारण करके, उसको किसी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि कंस के जेल के चार दीवारी के अंदर थी। लेकिन उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट ये था कि कंस जब आया देखने तो देख के आश्चर्यचकित हो गया। अरे शुचि समित, ये तो बड़ी पवित्र मुस्कुराहट, देवकी पवित्र मुस्कुराहट है, बड़ी चमक रही है, लगता है कि इसके हृदय में मेरे को मारने वाला हरि आ गया है। कंस कहता है कि इसके हृदय में ये चमक रही है, ऐसा कभी मैंने छह पहले बच्चों का इसने जन्म दिया है कभी इतनी न कभी खुश थी न कभी चमकी थी। ऐसे एक शब्द हमने बोला, आपने उसको ध्यान नहीं दिया हुआ, आवेश मन अनंक दुमदुभी। वसुदेव का नाम है अनंक दुमदुभी, एक नाम है। इसका अर्थ ये है कि वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने अपने ढोल बजाए, मृदंग बजाए, दुमदुमियां बजाई थी, तो वसुदेव की माँ ने वसुदेव को बताया था कि बेटा तेरे जन्म के समय देवताओं की दुमदुमियां बजी थी, मृदंग बजे थे और ऐसे ऐसे हमको मालूम है कि आप आगे चल के भगवान के पिता बनोगे। तो ये बात वसुदेव ने देवकी को बताई विवाह के समय, और इसलिए जब आकाशवाणी ने कहा आपका आठवां गर्भ, कंस देवकी का आठवां गर्भ तेरा मृत्यु होगा, तो देवकी बड़ी प्रसन्न हो गई। हाँ हाँ, जैसे मेरे पति कह रहे हैं भगवान मेरे घर में प्रकट होंगे। तो आज वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में जैसे गए हैं, कंस जैसा क्रूर व्यक्ति जिसने छह बच्चों को पत्थर पे पटक के मारे थे, आज वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसके हृदय में विष्णु आ गया है, हरि आ गया है और मेरे को स्त्री को मारना नहीं चाहिए, गर्भवती को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मेरा बदनामी हो जाएगी, मेरा अपजश हो जाएगा। अभी छोड़ो, इसको जन्म लेने दो, जन्म लेने के बाद देखा जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि जिस भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो जाता है उसके सामने कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी आता है तो उसका मन बदल जाता है, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन इससे पहले देवकी के छह बच्चों को तो कंस ने मार दिया, तो वो छह बच्चे कौन थे, उनको कंस ने क्यों मारा? सातवां बलराम जी क्यों देवकी के गर्भ में आया और फिर रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ? रात को जन्म लेते ही श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल क्यों चले गए? ये सब चर्चा कल करेंगे। ये ऐसे ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे हैं और सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में इन सब का उत्तर दिया है, तो कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? 58 मिनट, हाँ एक दो मिनट है अभी हमारे पास। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन, कमेंट? 59 हो गया, एक मिनट है।